نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نماز نبوی میں سے آج ہم جس چپٹر میں سے کچھ عمل کی باتیں لیں گے اس کا نام ہے نماز با جماعت, یعنی جماعت کی نماز کا کیا حکم ہے. تو اس میں سے پہلی چیز جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ مردوں کو بغیر کسی مجبوری کے مسجد میں جماعت پڑھنے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اگلی بات ہم نے دیکھی کہ اگر کوئی بلا وجہ مسجد کی جماعت سے پیچھے رہتا ہے تو وہ فتنے میں پڑ جائے گا. اگلی بات ہم نے اس میں دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیمار آدمی بھی دو لوگوں کے سہارے پر نماز کے لیے مسجد میں آتا تھا. اگلی بات, جماعت کی نماز اکیلی پڑھی ہوئی نماز سے 27 درجے زیادہ ثواب ہوتا ہے. پھر اگلی بات ہم نے دیکھی کہ نماز جماعت کی نماز کے لیے مسجد میں نہ آنے والے مردوں پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آتا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اذان کہلاؤں اور کسی شخص کو امامت کے لیے کہوں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز میں جماعت کی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے, اور یہ بخاری کی روایت ہے. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ نابینا شخص بھی اگر اذان کی آواز گھر تک سنتا ہے تو وہ بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا. سوچیے ذرا آنکھوں والوں کا پھر کیا حال ہوگا. اگلی بات ہم نے سیکھی عورتوں کے مسجد میں جانے کے بارے میں کہ عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے آنے سے نہیں روکنا چاہیے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت ہے. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے, اور اس کا کوٹھری میں نماز پڑھنا کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یہ حکم پردے کے متعلق ہے, نماز کے متعلق نہیں ہے کہ عورت جتنا باہر دور جائے گی اتنا ہی زیادہ اس کی بے پردگی اور اس کے اظہار کا ڈر ہے, فتنے میں پڑ سکتی ہے, لیکن گھر کے اندر چھپ کے پڑے گی تو اتنی ہی زیادہ وہ سیکیور ہوگی. بعض لوگ اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں عورتوں کے مسجد میں نہ جانے پہ, لیکن اس سے پہلے والی روایت شاید ان تک نہیں پہنچتی کہ جس میں عورتوں کو مسجد میں جانے کا حکم کے لیے منع نہ کیا جائے, بلکہ ایک صحابی کے بیٹے نے کہا ہم تو منع کریں گے, تو وہ اتنے ناراض ہوئے کہ غصے کا اظہار کیا کہ میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں اور تم اس پہ اپنی بات کرتے ہو. اگلی بات یہ کہ عورت مسجد جائے گی تو خوشبو لگا کر نہیں جائے گی. کون سی خوشبو جو اڑتی ہوئی ہو, اور یہ تو کہیں بھی نہیں لگا سکتی, گھر میں رہے تو لگائے گی لیکن باہر جا کے اور خوشبو لگانا اور اس طرح کے کام کرنا یہ درست نہیں ہے. پھر اگلی بات نماز کی جماعت کے بارے میں جو ہم نے سیکھی کہ اگر کسی کو قضاء حاجت کی طلب ہو, یعنی باتھ روم میں جانے کی حاجت ہو, تو پہلے فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے, ورنہ توجہ نہیں رہے گی. پھر اگلی بات, جو شخص اذان سن کر مسجد میں جماعت کے لیے بغیر کسی عذر کے نہ جائے اور گھر میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. دلائل سارے موجود ہیں الحمدللہ کتاب میں. اگلی بات ہم نے دیکھی کہ جس جگہ تین آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان غالب ہوتا ہے. شیطان غالب ہوگا تو کوئی غلط کام ہی کروائے گا نا, پھر کوئی اچھی چیز تو نہیں وہ دیکھیں گے یا سنیں گے. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ جب شام کا کھانا تیار ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ اور کھانے میں جلدی نہ کرو, یعنی اگر کسی وقت ایسی سچویشن ہو تو کھانا کھا کے پھر نماز کے میں شامل ہوا جا سکتا ہے. اگلی بات ہم نے دیکھی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت اللہ کے نبی نے دی. اگلے مسائل جو ہم نے اس چیپٹر میں دیکھے وہ صفوں کے بارے میں تھے. تو صف کو سیدھا کرنا اسلام کا ایک ریچول ہے. اگلی بات دیکھی کہ اللہ کے نبی خود صفوں کو سیدھا کروایا کرتے تھے. और आप किसी के अगर आगे कोई बड़ा होता और कोई पीछे होता तो उसको बराबर करते। फिर इसी तरह अगली बात सीखी कि सफ़ों का टेढ़ा होना दिलों के अंदर इख्तलाफ और कदूरत को पैदा करता है। फिर अगली बात हमने देखी कि सफ किस तरह मिली हो कि कंधे से कंधा और कदम से कदम मिले हो, और अगर कहीं बीच में गैप हो तो आपने कहा कि शैतान जो है वो उन गैप्स के अंदर ऐसे आ जाता है जैसे बकरी का काला बच्चा। फिर अगली बात इस हिस्से में हमने सीखी कि सहाबे कराम इस हुक्म को सुनने के बाद इतनी कसरत से सब सही बनाते थे और करीब आते थे कि गोया कैसे लगता था कि जैसे एक सीसा पिलाई हुई दीवार हो। अगली बात हमने इसमें सीखी कि सफ की दाईं तरफ यानी पहली सफ में खड़ा होना इसका अजर है कि अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत भेजता है और फरिश्ते भी उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। आप देखिए कि इसके लिए वक्त पे जाना पड़ता है ना, जो लोग शुरू में जाएंगे वो आगे बैठेंगे और जो पीछे जाएंगे वो बाद में आएंगे, तो इसी तरह बाद में आके सफ़ों को चीर के आगे नहीं जाना, ये अमल दूसरों को तकलीफ देता है। फिर अगली बात हमने सीखी कि पहली सफ पूरी होने से पहले दूसरी सफ में नहीं खड़ा होना चाहिए। फिर अगली बात हमने सीखी कि मर्दों की सफ़ों में अगली सफ़ें सवाब के एतबार से बेहतर हैं और औरतों की सूरत में सबसे आखिरी सफ। ये कब होगा? जब मर्द और औरतें एक ही जगह पे नमाज पढ़ेंगे। पहली नमाज सफ में मर्दों से इख्तलात होने का डर होगा ना, तो जितनी पीछे होगी तो इख्तलात कम होगा, इख्तलात से मुराद ये कि मिक्सिंग। इसके बरक्स जब औरतें अकेली अपने प्रेइंग रूम में पढ़ें जहां मर्द नहीं, तो फिर उनके लिए भी वही हुक्म है कि पहली सफ ही बेहतर होगी। फिर अगली बात आप हमने देखी कि जो लोग पहली सफ से पीछे हटते हैं अल्लाह उनको अपनी रहमत से पीछे हटा देता है। दुनिया में भी अब देखिए हम आगे बैठना चाहते हैं ना, अगली अगली जो सीट्स होती है उनकी ज्यादा टिकट होती है जहां बड़े बड़े शोज होते हैं। जब नमाज में बंदा आगे जाता है तो उससे इंशाल्लाह फोकस भी ज्यादा होता है और अल्लाह के हुक्म से फिर उससे फायदा भी इंसान ज्यादा हासिल करता है। अगली बात हमने इसमें सीखी कि सफ के पीछे अकेले शख्स की नमाज नहीं होती। आपने ऐसे शख्स को दोबारा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। हाँ, अगर ऐसा हो कि पहली सफ पूरी हो चुकी है और एक शख्स अकेला रह गया, फिर उस सूरत में वो सफ के बीच में खड़ा होकर अगली सफ को शुरू कर सकता है। फिर अगली चीज़ है कि सफ में से किसी को खींच के पीछे करना, ये भी सुन्नत से साबित नहीं। कुछ लोग ऐसा अमल करते हैं, खुद ही अगर कोई देख के वॉलंटियरली ऐसा करे कि भाई पीछे कोई एक शख्स रह गया तो चले मैं अगली सफ को पूरे मतलब उसके अंदर जाने और उनको तंग करने के लिए अगर पीछे खड़ा हो जाऊं तो वो दुरुस्त है, लेकिन अदरवाइज खींचना नहीं चाहिए। फिर अगली बात यह है कि इमाम के करीब सफ में जो लोग हों वो दीन के एतबार से ज्यादा समझ वाले हों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वजू टूटने की सूरत में फिर इमाम को निकलना पड़ता है और मुक्तदियों में से किसी एक को आगे आना पड़ता है, तो उसके पास जो लोग होंगे वो दीनी और अकली हिसाब से जब मजबूत होंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर वो उसकी जगह ले सकेंगे। अब सब पढ़ने का तरीका क्या है इसको हम प्रैक्टिकली देख लें। बहुत सारी खराबियां इसमें देखी जाती हैं, स्पेशली वो खवातीन बेचारी जिनको शुरू से ट्रेनिंग नहीं होती, वो और मर्द भी बहुत सारे ऐसे ही होते होंगे, उनको तो हमने नहीं देखा, लेकिन सफ पूरी करना बहुत लाजमी है। बाज़ लोग मस्जिद में आते हैं उनको समझ नहीं आती हम कहाँ से सफ शुरू करें, कोई राइट साइड पे आके खड़ा हो जाता है, कोई उधर खड़ा हो जाता है, कोई इधर, और कोई इस तरह की कहानी, कुछ लोग तीन इधर खड़े हो जाते हैं तीन इधर खड़े होते हैं। तो सफ का एक मकसद है, कान बुनजान मरसूस, सूरह सफ में ये आयत है, कुरान पाक में एक पूरी आयत है सूरह सफ, इसी से आप सफ़ों की अहमियत देख लें और मुसलमानों को अल्लाह ताला कितना ऑर्गेनाइज इंसान बनाना चाहता है। तो बेस्ट तरीका क्या है, अगर मर्दों में है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आगे इमाम खड़ा होगा, उसके बिल्कुल पीछे सेंटर में पहला एक शख्स होगा तो वो मर्द इमाम के साथ खड़ा होगा राइट साइड पे, इमाम और एक मर्द हो तो इमाम खड़ा होगा और उसके राइट साइड पे मुक्तदी खड़ा होगा। इतने में एक और आ गया, जब अगला आएगा तो जो राइट साइड पे खड़ा था वो उसको पकड़ के पीछे ले लेगा और वो दोनों फिर इमाम के पीछे आ जाएंगे। फिर उसके बाद हर आने वाला राइट पे, अगला लेफ्ट में, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, यानी सफ यूं फैलती है, मिडल से एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। इसी तरह औरतों में अगर औरत किसी भी मस्जिद में आए और प्रेइंग रूम में जाए तो उसका तरीका यह है कि बिल्कुल मिडल ऑफ द जो आपका यानी वो रूम होगा उसके खड़े हो, फिर दूसरे आने वाली उसके राइट में खड़ी हो, तीसरी आने वाली उसके लेफ्ट में, चौथी इधर, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। जब वो रूम की विड्थ पूरी हो जाए, पूरी सब खत्म, देन अगली आएंगी तो वो फिर उसके मिडल से शुरू होंगे। ये है एक मसनून अमल। पहली सब में जगह हो तो दूसरे सब में नहीं खड़ा होना चाहिए। बाज़ लोग एक सफ में खड़े हैं, कोई आती है वो बच्चे वाली है, वो कहती नहीं मैं सफ में नहीं जाती, मैं अकेली खड़ी होती हूँ। ऐसा नहीं होता। कभी भी आप देखिए कि इस तरह की बेतरतीबी जो होती है फिर उससे वो बात नहीं बनती। फिर इसी तरह अगली चीज़ इसमें हमने ये सीखी कि अगर कभी बच्चे भी हों साथ तो क्या किया जाएगा, मर्द भी हैं बच्चे भी हैं, तो फिर उस सूरत में जब बहुत सारे लोग हैं तो क्या होगा कि पहले आगे इमाम होगा, फिर उसके बाद मर्दों की सफ बनेगी, फिर उसके बाद लड़कों की सफ बनेगी, और फिर अगर औरतें हैं तो फिर पीछे औरतों की सफ होगी। बाज दफा क्या होता है कि बच्चे ज्यादा हैं मर्द एक है तो क्या होगा, फिर वो बच्चों और मर्दों की सफ में ही होगा। और इसका ऑपोजिट भी है, कभी मर्द बहुत सारे हैं और बच्चा एक ही है या लड़का एक है तो वो भी मर्दों के साथ आएगा, लेकिन औरत बहर हाल सबसे पीछे होगी। ठीक है। और इसी तरह इसमें हमने देखा कि नाबालिग बच्चा भी अगर कुरान या इल्म के अंदर ज्यादा है तो वो इमाम बनेगा। अल्लाह के नबी के दौर में एक ऐसा बच्चा था, अमर बिन सलमा कहते हैं कि मैं बच्चा था लेकिन मुझे अपने कबीले में सबसे ज्यादा कुरान याद था, तो अब फिर मुझे इमाम बनाया गया और मेरी उम्र उस वक़्त 7 साल की थी। ठीक है, बच्चा है, उसको तहारत के मसाइल पता होने चाहिए, उसके साथ कोई यानी ऐसी उससे गलत नमाज ना, उसकी नमाज ठीक हो, तो फिर बच्चे को भी इमाम बनाया जा सकता है। इसी तरह इसमें यह कि अंधे शख्स को भी इमाम बनाया जा सकता है, और इसकी दलील अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम है। फिर वो शख्स जिससे लोग उसकी बिदअत या उसकी किसी मासियत की वजह से नाराज हों, ऐसे इमाम के पीछे भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। फिर अगली बात यह है कि इमाम को चाहिए कि अगर पीछे बच्चे नमाज बच्चे वाली माएँ हों तो नमाज को मुख्तसिर कर दे। ये एक खूबसूरत अदब सिखाया गया। ये नहीं कहा कि बच्चों को माएँ लाएं ना, नहीं, बच्चे आएंगे तो सीखेंगे ना। ये अलग बात है कि शुरू से जो बच्चे मस्जिदों में आने के आदी होते हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह बाद में उनको आदत हो जाती है तो वो ज़्यादा नहीं रोते, लेकिन अच्छा अमल क्या है कि इमाम फिर उस वक़्त नमाज को मुख्तसिर कर दे। किसी औरत के बच्चे के रोने की आवाज़ हो तो अल्लाह के नबी नमाज मुख्तसिर कर दिया करते थे। इसी तरह अगली चीज़ क्या पता चलती है कि कोई शख्स जब इमामत कराए तो छोटी नमाज पढ़ाए, अकेले में पढ़े, नफिल पढ़े, सुन्नतें पढ़े तो लंबी पढ़े, लेकिन दूसरों के साथ छोटी पढ़े, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हें नहीं पता कि वहाँ ज़ईफ़ और बूढ़े और कमज़ोर भी होते हैं, बल्कि सूरह मुज़म्मिल में तो एक पूरा अल्लाह ताला ने एक नक्शा खींचा है कि फ़क़्रा मा तयस्सरा मिनल कुरान, और उसमें आगे कहा गया कि अल्लाह ताला जानता है कि तुम में बूढ़े भी हैं कमज़ोर भी हैं, तो अल्लाह ताला लोगों की रियायत करते हैं। फिर अगली बात, इसका ये नहीं मतलब कि जल्दी छोटी नमाज करने का कि रुकू क्याम और यानी सजदे और रुकू जो है वही जल्दी जल्दी किए जाएं, इससे मुराद ये कि वो हिस्सा जहाँ तिलावत की जाती है, सूरह फातिहा के बाद वाला हिस्सा रुकू में जाने से पहले का, उसके अंदर थोड़ी सी यानी कमी की जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अफसल नमाज वो है जिसमें क्याम लंबा हो। ये कब होता है? जब आपके अपने लिए है, लेकिन अगर कहीं फितने का डर हो तो फिर आप उस वक़्त नमाज को मुख्तसिर कर सकते हैं। अगली बात इसमें हमने सीखी और वो क्या है कि नमाज के लिए सुकून से जाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने एक शख्स को देखा कि वो भाग भाग के नमाज के लिए जा रहा था और आवाज़ें आने लगी पीछे से, तो आपने कहा कि आराम से आओ। पहली बंदा वक्त पे निकले, अब घर से ही देर से निकले तो अब आके मस्जिद में जूता फेंक रहे हैं, इधर जा रहे हैं और टकरा रहे हैं, उसको टकरा रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है। आगे घर से निकले, अब नमाज में शामिल हो गए, अब सुकून और वक्कार के साथ आए। फिर अगली बात आपने फरमाया कि उन इमामों पर वबाल है, यानी वो नमाज पढ़ाने वाले के जिन्होंने नमाज के अंदर रुकू क्याम सजदों को इतना छोटा कर दिया कि वो यानी दूसरे लोग उनके लिए फॉलो ही नहीं कर पाए। बाज दफ़ा ऐसा होता है ना कि नमाज ही ठीक नहीं पढ़ाई जाती, अभी आप सीधे नहीं हुए होते तो इमाम साहब रुकू में चले जाते हैं, अभी आप रुकू में जाने का सोच रहे होते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। तो फरमाया कि मुक्तदियों के लिए तो सवाब है लेकिन इमाम के लिए ऐसी नमाज वबाल है। फिर अगली बात है कि अगर इमाम बेवजू हो या खुदा ना हसद जुनाबत की हालत में नमाज पढ़ा दे या कोई और उसके ऊपर ऐसी उजर हो तो इमाम तो गुनाहगार होगा, पर उसकी नमाज नहीं होगी लेकिन मुक्तदियों की नमाज हो जाएगी। बाद जब हम शक करते हैं ना, फुलां ने सही पढ़ी या नहीं, उसका वजू था कि नहीं, तो फिर उसका तरीका ये कि उसका मामला उसके साथ है लेकिन आपकी नमाज होगी। जिस चीज़ पे हमारा कोई कसूर ही नहीं, हमें पता ही नहीं एक बंदा वजू से है कि नहीं, उस पे अल्लाह ताला दूसरों को फिर क्यों पकड़ेंगे। फिर अगली बात है कि नमाज पढ़ाने के बाद इमाम मुक्तियों मुक्तदी मुक्तदी कौन होते हैं, नमाज पढ़ने वाले फॉलोअर्स, उनकी तरफ मुंह करके देखे। आप राइट साइड से भी मुड़ के पलटते थे, बस सबने साथ पढ़ी, अब इमाम पलटे। इस हद तक सहाबा कराम ने चीजें नोट की हुई है कि आप राइट साइड से मुड़ते थे या लेफ्ट साइड से मुंह करके बैठते थे, दोनों तरह के दलाइल मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि आप पलट के फिर मुक्तदियों की तरफ बैठते और फिर कोई भी बात होती तो उसे की जाती। फिर अगली बात इसमें एक हमने सीखी कि इमाम से पहले कोई एक्शन नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि मुझे डर लगता है उन लोगों को कि जो इमाम से पहले सजदे से सर उठा लेते हैं कि कहीं उनके सर गधे के सर ना बन जाए। और एक ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं तारीख में कि वो बहुत सर लपेट के और इस तरह नमाज पढ़ा अपने इल्म सिखाया करते थे, तो लोगों ने जब एक दफा उसकी वजह पूछी तो कहते हैं कि मैंने इस मसले में शक किया था और अल्लाह ने मेरा सर ऐसा कर दिया। यानी उनके सर में ही अल्लाह ताला ने इस तरह का कुछ कर दिया था, कुछ ऐसी निशानी के जो गधे के सर की तरह बन गया था, और वो कहते हैं कि मैंने शक किया था। तो इमाम से पहले सजदे से उठना या कोई भी एक्शन पहले करना, ये चीज़ जो है वो दुरुस्त नहीं। फिर इसी तरह जब इमाम सूरह फातिहा पढ़ते हुए दुआ लीन कहे तो उसके बाद मुक्तदी आमीन कहेंगे। और आपने कहा कि जिसकी आमीन पे फरिश्तों ने आमीन कह दिया तो उसकी दुआ कबूल होगी। फिर जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो मुक्तदी कहेंगे रब्बना वलकल हम्द। फिर अगली बात हमने इस हिस्से में सीखी कि इमाम अगर कोई गलती करे तो मर्दों में जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो सुबहान अल्लाह कहेंगे, तो फौरन वो समझ जाएगा कि मैंने कोई मिस्टेक की है। और अगर औरतें उस गलती को नोट करें तो वो हाथ से बजाना। अब ये तालियां पीटना नहीं, बस एक जैसे टिक की आवाज़ है या कोई आपके हाथ में चीज़ है इस तरह की आवाज़ के, जिससे उसको पता चल जाए कि मैंने दुरुस्त नहीं किया। बाज़ लोगों ने यहाँ से तालियां बजाना जायज़ कर रहा और पता नहीं कहाँ कहाँ मसले चले जाते हैं। तो सिंपल बात ये कि औरत आवाज़ निकालेगी, फितना होगा। बाज़ लोगों ने इस बात को औरत की आवाज़ के पर्दे पर दलील दी कि देखें वो तो नमाज में ताली बजाएगी तो फिर वो आवाज़ कैसे आएगी। तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करने वाली बात है। औरत की ताली में ज़्यादा कशिश हो सकती है उसकी आवाज़ से बाज़ दफ़ा उसका अपना महरम ही गलती करता है, तो फिर तो आवाज़ के मसले की कोई बात ही नहीं है। हाँ, सिर्फ ये कि औरत को अल्लाह ताला ने एक ऑनर दी है कि वो उसकी आवाज़ जो उस तरह से, वो अगर इमाम के लिए सुबहान अल्लाह कुछ कहती है तो फ़र्क रख दिया है मर्दों से दूसरी तरफ। और फिर ऐसी बातों से पता चलता है कि इस्लाम में औरत और मर्द के लिए दीन के अहकाम जो हैं तकरीबन एक जैसे हैं, सिवाय इसके कि कोई उजर ना बीच में हो। फिर अगली बात इसमें हमने औरतों की इमामत के लिए सीखी और वो क्या थी कि औरत नमाज जमात से कराएगी तो सफ के बीच में खड़ी होगी, औरत आगे नहीं खड़ी हो सकती। यानी जैसे मर्द तो बिल्कुल अकेले आगे खड़े होते हैं फिर मर्द शुरू होते हैं, औरत औरतों की जमात में रहेगी। किस सूरत में? कि उसकी राइट साइड पे ज्यादा लोग होंगे और लेफ्ट साइड पे कम होंगे। मसलन चार लोग हैं, एक नमाज पढ़ा रहा है, एक है, दो खवातीन इधर होंगी और तीसरी साइड पे होंगी। ठीक है, ये ज्यादा होना चाहिए। और अल्लाह के नबी अपनी मतलब सहाबियात को इसका हुक्म भी दिया करते थे। उम्मे वरका का हुक्म मिलता है कि वो अपने घर वालों की इमामत कराती थी। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हु औरतों की इमामत कराया करती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे में नमाज़ पढ़ी और लोगों ने आपके बाहर 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 पढ़ी। इससे क्या मसला मिलता है कि इमाम नज़र ना आ रहा हो, सिर्फ उसकी आवाज़ अगर आ रही है तो भी नमाज होगी। जैसे अमूमन आजकल मस्जिदों में होता है, ख़वातीन के जो प्रेइंग रूम है वहाँ स्पीकर सिस्टम तो होता है लेकिन नज़र नहीं आता, तो इसकी भी दलील हमें मिल जाती है। फिर अगली बात हमने इसमें देखी और वो क्या है कि अगर इमाम और मुक्तदियों के बीच में कोई दीवार आ जाती है तो उसकी नमाज होती है। और दूसरी बात यह कि अगर कोई नमाज में गलती करता है तो इमाम उसकी इसलाह कर सकता है। यानी एक मौका ऐसा है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास जो थे बच्चे थे, अल्लाह के नबी के घर में थे, आप नमाज पढ़ने खड़े हुए तो जाके ये भी खड़े हो गए जमात में। अब इनको पता ही नहीं था ये बेचारे बाई साइड पे खड़े हो गए लेफ्ट साइड पे, तो अल्लाह के नबी ने इनके कान से पकड़ के अपने पीछे से घुमा के इनको अपने राइट साइड पे किया। आगे से नहीं गुजरेंगे, देखे इमाम के आगे से नहीं गुजरेंगे, पीछे से पकड़ा। कहते हैं और इस तरह और भी मौके में ऐसा हुआ। तो इससे पता चलता है कि अगर मुक्तदियों में कोई गलती करे तो इमाम उसकी इसलाह जो है वो कर सकते हैं। अगर दो नमाज पढ़ने वाले हैं तो एक इमाम के इधर खड़ा हो रहा है और वो है, लेकिन दो होंगे तो फिर वो दोनों पीछे हो जाएंगे। फिर इसी तरह औरत कभी भी इमाम के साथ नहीं खड़ी होगी। मसलन देखें कि एक इमाम है और एक मर्द और एक औरत है नमाज पढ़ने वाले, ये नहीं होगा कि इमाम के एक तरफ औरत मर्द खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ औरत, औरत अकेली भी पीछे ही पड़ेगी। फिर उसके बाद अगली चीज हमने जो सीखी और वो क्या है कि एक मौके पे अल्लाह के नबी बीमार थे, तो नमाज का जब वक्त हुआ तो अबू बकर सिद्दीक इमामत के लिए खड़े हुए, तो आप जरा सी अपनी तबीयत में आसूदगी जब पाते तो आपने दो सहाबा के कंधों पे हाथ रख के मस्जिद में वापस आए। अबू बकर सिद्दीक ने जब आपकी आमद को महसूस किया तो पीछे हटना चाहा, तो आपने उनको इशारा किया कि पीछे ना हटें। फिर आप अबू बकर सिद्दीक की लेफ्ट साइड पे बैठे और आपने बैठ के नमाज पढ़ी और अबू बकर सिद्दीक खड़े थे। अबू बकर अल्लाह के नबी की इक्तदा करते, यानी अल्लाह के नबी पढ़ते तो अबू बकर उसको फॉलो करते और अबू बकर को फिर लोग फॉलो करते। ये जोहर की नमाज थी। तो आप देखिए कि अल्लाह के नबी की जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक को ये एक ऑनर हासिल हुआ था कि आपके साथ नमाज जाए नमाज पे आप उनके साथ रहे थे। फिर अगली बात हमने देखी कि अगर कोई शख्स किसी जगह जमात से नमाज पढ़ता है, अब घर जाके अपने घर वालों को भी जमात से पढ़ाना चाहता है तो पढ़ा सकता है। हजरत माज जो थे वो अल्लाह के नबी के साथ नमाज पढ़ते थे, फिर उसके बाद अपनी कौम के पास आते तो वहां फिर जमात कराते। इस सूरत में फिर पहली नमाज एक फर्ज हो जाएगी और एक नमाज उसके लिए नफिल हो जाएगी। इसी तरह एक और बड़ा प्यारा इस्लाम का हुसन है और वो क्या कि अगर कोई देर से मस्जिद में गया, नमाज हो चुकी, अब क्या किया जाए, तो अल्लाह के नबी के दौर में ऐसा मौका आया तो आपने कहा तुम में से कौन है जो अपने भाई के हक में सदका करे। कहा वो कैसे? कहा तुम में से कोई इसके साथ मिलके इसकी जमात करवा दे तो इसकी सुन्नफिल हो जाएगी, उसकी फर्ज हो जाएगी। तो अब देखिए कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन देता है ना, कि जिसमें एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, जिसमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत की जाती है। अब ये तो कुछ अमूमी बातें नमाज की थी, इसी तरह कुछ और बातें जहन में आती हैं। मसलन अल्लाह ना करे एक नमाज कजा हो चुकी थी, हो रही थी, मस्जिद में गए, साथ ही दूसरी नमाज का वक्त आ गया, अब क्या किया जाए? फिर कजा नमाज पढ़ी जाएगी नहीं के फर्ज मस्जिद में पढ़े जाएंगे। तो इसका तरीका क्या है कि आप मस्जिद में गए, जमात खड़ी थी तो आप पहले वो ही नमाज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप अपनी नमाज पढ़ेंगे। फिर इसी तरह एक और सवाल है, एक से ज्यादा कजा नमाजें हों, मिसाल है किसी वजह से, अब ये मैं ये नहीं कह रही कि ये रुख्सतें हैं, ये तो एक बहुत ही ज्यादा कठिन मरहला है कि किसी की नमाज कजा हो, लेकिन अगर किसी की हो तो फिर तरतीब से उसको पढ़नी चाहिए। इसी तरह हमने बल्कि जो रोजों के मसाइल में ये बात तरावी के अंदर बात नहीं की, एक यहाँ बहुत ही अहम मसला है। बस दफा आप मस्जिद में गए, मस्जिद में जमात हो चुकी थी या पूरी होने वाली थी, अब आपने फर्ज भी पढ़ने और तरावियां भी पढ़नी है, अब क्या करेंगे आप? बहुत खुल के सुनने की बात है, गलती ना करें आप इसमें। बस पहली तो बात है कि आइडियल सिचुएशन तो यही होती है कि हमेशा वक्त पे आए, लेकिन हमेशा आइडियल सिचुएशन रहती नहीं। किसी मजबूरी से आप गए मस्जिद में, देर से जाएं, जमात में शामिल होने का तरीका भी समझ लें। वो शायद इस बुक में इतना वाजे नहीं होगा तो मैं आपको अपने लफ्जों में भी बता देती हूँ कि मस्जिद में आप गए, कोई भी नमाज है, आप तरावियों को भूल जाएं एक लम्हे के लिए, कोई भी नमाज है, जो काम बाकी लोग कर रहे हैं ना इमाम की मैयत में आप भी वही करें, वो खड़े हैं तो आप उनके साथ खड़े रहें, मुतमईन हो, पूछे ना क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ नहीं, बस अल्लाह अकबर कहना लाजमी है। वैसे खड़े हो गए तो आपकी नमाज नहीं होगी, खड़ जाके खड़े होके अल्लाह अकबर, ये जो एक फर्स्ट है ना इस्तफ्ताह जो होता है, जो खड़ा होना, ये करना लाजिम है। इसके बाद आप जो वो कर रहे हैं वही करें, अगर वो रुकू में थे तो रुकू में जाएं, सजदे में तो सजदे में जाएं, पूरी नमाज पूरे सुकून के साथ उनके साथ पढ़ें। उसके बाद सलाम फेरने से पहले तक आप साथ ही रहेंगे, उसके बाद जब सारे लोग सलाम फेरेंगे अब आप सलाम नहीं फेरेंगे, अब आप एक छोटा सा मेयार ज़हन में रख लें कि मैंने कितनी दफा सूरत फातिहा पढ़ी है। एक सिंपल सी बात है जो कम पढ़े लिखे को भी समझ में याद रहेगी और बच्चे को भी याद रहेगी, काउंट करें अपने माइंड में कि मैंने कितनी पढ़ी। अब अगर आप चार फर्जों के लिए गए, आपने दो दफा सूरह फातिहा पढ़ी है तो आपके दो रकत हुई हैं, तीन दफा पढ़ी है तो तीन हो गई हैं, और चार दफा पढ़ी है तो पूरी सलाम पूरी हो गई है। जितनी मिसिंग थी ना सलाम फेरे बगैर आप दोबारा खड़े हो जाए, अब इसके बाद अब आपकी अपनी तरतीब शुरू हो गई, चार पहले तीन पढ़ी थी तो अब जब आप खड़े हुए तो ये आपकी तीसरी होगी, आपने पहले एक पढ़ी थी, अब ये आपकी दूसरी होगी। इसके मुताबिक आप अगले तशहुद और सलाम करेंगे, ठीक है। यानी ये चीज बहुत कम लोग इसको समझते हैं। बाद लोग आते हैं जल्दी जल्दी अपनी पढ़नी शुरू करते हैं, फिर उसके साथ मिलते हैं, ये मुनासिब तरीका नहीं है। इसके बाद दूसरा मसला है कि आप नमाज के लिए मस्जिद में गए, तरावी के लिए फर्ज भी हो गए थे, इमाम साहब आखिरी रकत में थे या बटन, जो ही इमाम रकत में उस वक्त तो फौरन मिल जाए। इवन आपने फरमाया कि जिसने एक रकत भी पाई उसने जमात पा ली, आप सिर्फ आखिरी एक्शंस में भी जाके मिल जाते हैं ना, सलाम फेरने से पहले के वक्त आप गए, सब लोग तशहुद में थे, अल्लाह अकबर कह के जाके बैठिए, आप भी उनके साथ मुतमईन होके बैठे, उसके बाद खड़े हो अपनी रकत पढ़ लें, चारों रकतें पढ़ लें, उसके बाद इमाम साहब टाइम देते हैं जो सुन्नतों का, उस वक्त लोग सुन्नतें पढ़ रहे हैं, उसी दौरान आप अपने फर्ज पढ़ लेंगे। बस फॉर एग्जाम्पल आप गए तो फर्जों की सलाम फेरी गई, अब क्या करें? अब आपके पास दो तीन क्वेश्चन है, क्या फर्ज नमाज पढ़ूं, अच्छा क्या फिर मैं तरावी पढ़ूं कि पहले सुन्नतें पढ़ूं, इसके लिए क्या आप करेंगे, क्या आप इंतजार करें बैठे? इमाम साहब जब तरावी शुरू करेंगे ना, आप उस पहली तरावी में या जो भी उसके बाद आपके वो तरावी पढ़ा रहे हैं, इवन वो बीच में दो तीन तरावियां पढ़ भी चुके हैं अगर, तो आप नियत करेंगे अपने दिल में अपने फर्जों की, चार फर्ज इशा के, इमाम साहब के साथ पूरी दो तरावी तक साथ रहें, फिर एंड पे वही करें, वो सलाम फेर लेंगे, आप सलाम नहीं फेरेंगे, आप खड़े होके फिर दो रकत अपनी पढ़ेंगे। इस तरह वो दो तरावी पढ़ने के दौरान आपने, उन्होंने हो सकता है उस दौरान अगली दो तरावी शुरू कर दी है, आप अपने ये दो फर्ज चार फर्ज पूरे करें, इसके बाद फिर सुन्नतों की परवाह ना करें जो हम दो सुन्नतें पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ईमान के साथ फॉलो करें। बाज लोग ज्यादा ही तरकत पढ़ रहे होते हैं तो उसके बाद आप अपनी तरावी पढ़नी शुरू कर दें, आठ तरावी जहां आपकी पूरी हो, फिर उसके बाद आप आखिर में अपनी दो सुन्नतें पढ़ें या वितर पढ़ें, कुछ भी है, लेकिन यह है कि जमात के अंदर दाखिल होने का ये एक तरीका है। कोई सवाल? जी नहीं, आपकी नियत फर्जों की रहेगी, आपकी वो तरावियां नहीं होंगी, हाँ आप फर्ज की नियत करेंगे और वो तरावी जो है वो आपकी फर्ज गिनेंगे, वो तरावी नहीं आपकी हुई, फिर इमाम साहब फॉर एग्जाम्पल कि अब इमाम साहब ने आठ तरावी पढ़ ली है लेकिन आपकी तो छह हुई है क्योंकि आपने पहली दो तरावी जो थी वो फर्जों की नियत से बड़ी, तो फिर दो रकत आखिर में आप अपनी खुद पढ़ लें। जी फिर वो आपके फर्ज, यानी जमात ना जाया करें। बाज लोग फिर अपनी नमाज पढ़ लेते हैं और बाज जो फर्ज नमाज है वो छोड़ चुके होते हैं और तरावी सिर्फ जमात से पढ़ते हैं, तो ये मसनून नहीं है, फर्ज जरूर साथ पढ़ें। जी जी सिर्फ फातिहा, ये इनका सवाल है कि अगर इमाम साहब नमाज में इतनी जल्दी पढ़ें कि वो, आप देर से गए हैं तब की बात कर रही हैं? नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा कैसे है कि आप पढ़ ही नहीं रहे और उन्होंने उसके बाद वाली सूरत भी पढ़ ली है? फिर इसके लिए देखें कि जितनी, और फिर रुकू कितना लंबा करते हैं वो इमाम, यानी अगर तो इतनी गुंजाइश है ना कि वो रुकू जरा इतना वक्त मिलता है तो फिर आप जो पढ़ रहे थे वो पूरी कर लें और फिर रुकू में जाएं, फिर नहीं है तो फिर वही एंड पे करें। अगर बिलफर्ज ऐसी कोई सूरत है, आपकी सूरह फातिहा पूरी नहीं हुई और आपको ये डर लग रहा है कि आप सूरह फातिहा पढ़ने में रुकू मिस कर देंगे, फिर चली जाए रुकू में और फिर आप उनके सलाम फेरने के बाद अपनी वो रकत रिपीट करें, इतनी जल्दी की रत नहीं होती ना, जो नहीं होना चाहिए। जी कोई बात नहीं, जितने भी हो जाएं, जो ही आप इमाम की सलाम से लग हो गए उसके बाद आपकी अपनी रकत हो जाएगी, आपकी तीन तशहुद भी हो सकते हैं, आपका कोई एक भी तशहुद नहीं हो सकता, जो ही इमाम साहब सलाम फेरे फौरन इसी ग्राफ पे आ जाएं कि ये मेरी कौन सी रकत है, पहली है तो फिर दो रकत के बाद तशहुद में बैठ के फिर खड़े हों, दो दूसरी थी ये तो तीसरी, उसको आप तीसरी के लिए फिर खड़ा होना महसूस करें, फिर उसके बाद आपकी अपनी तरतीब हो जाएगी। ठीक है जी जी इनका, मैं आपका सवाल समझ गई कि अगर कोई साल में जाए कि क्याम ना कर सके सिर्फ रुकू में मिले तो फिर उसकी रकत का क्या होगा, ये इख्तलाफी मसला है, आएगा मसला आगे भी, कि इस सूरत में बास लोग कहते हैं कि हो जाती है और वो दलील देते हैं कि मन रकल, जिसने एक रकत पाई, जिसने रुकू को पाया उसने रकत पा ली, हालांकि ये थोड़ा सा मुगालता है। उस सूरत में देखिए दो बुनियादी इस्लाम के रुकन खत्म हो गए ना नमाज के, क्याम فرض ہے، قوموا للہ قانتین، اور دوسری سورہ فاتحہ، یہ مسئلے آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ، اس میں ہم پوری نماز کی ترتیب میں یہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک یعنی صرف جماعت کے متعلق اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں، یہ باتیں آپ سے ذکر کی. یہ کہہ رہی ہیں کہ وی آر فور ممبرس، یعنی مائی ہسبینڈ، می اینڈ ون سن اینڈ ون ڈاٹر، ہاؤ کین وی آفر نماز وتھ جماعت، کین وی کین مائی سن اسٹینڈ وتھ اس، ہی از 12 ایئرز. بہت اچھا سوال ہے، شاباش. پریکٹیکل سوال کیا کریں نا تاکہ پتہ چلے. گھر میں چار لوگ ہیں، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی اور ایک ماں، اب کیا کیا جائے گا؟ اور آف کورس ان کی بات سے یہی لگ رہا ہے کہ باپ ہی نماز پڑھاتے ہیں، مرد باپ جو بھی ہیں، باپ یا بیٹا دونوں میں سے کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، جس کا نالج زیادہ ہے یا جو پڑھانا چاہے وہ جماعت کرائے گا، دوسرا مرد جو ہے وہ اس کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا، یہ پہلی صف ہو جائے گی، اور دوسری صف میں ماں اور بیٹی دونوں کھڑے ہوں گے. مین فرسٹ مائی ہسبینڈ از ام، جی اب ان کا جواب مل گیا. یہ کہہ رہی ہیں کہ جمعے کے لیے کتنی رکعت ہم خود پڑھتے ہیں؟ امام دو رکعت پڑھتے ہیں، بس دو رکعت ہی جمعہ ہوتا ہے. نماز جمعہ کا ٹاپک آگے آئے گا. جی دس دعا ٹو ریفرمڈیز، ٹھیک ہے جی. چلیے یہ چیپٹر پورا ہوا، اگلے چیپٹر پہ چلتے ہیں. اب اگلا چیپٹر جو ہے وہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جو آپ کی اے ٹو زی صلات ہے، نماز پڑھنے کا پورا طریقہ، جس میں آپ دیکھیں کہ تقریباً یہ 70-80 پیجز کا چیپٹر ہے. اس میں ایک ایک چیز اتنی کلیئر بیان ہوئی ہے الحمدللہ، کہ آپ اس کو اگر بڑے سکون سے جب بعد میں پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ اس میں کیا بہتر ہے. میں چاہوں گی کہ اس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ کو پریزنٹیشن میں پریکٹیکل نماز پڑھتی بھی دکھا دی جائے، وہ زیادہ ایزی ہو جائے گا، کیونکہ خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس چیپٹر میں سے بعض چیزوں کو دیکھتے جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ یعنی سہولت مل جائے گی. تو پریزنٹیشن آن کیجئے، یہ اس پہ میرے کمپیوٹر میں بھی ہے اگر آپ اس کو لینا چاہیں. آپ کے پاس تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی اس میں ہے، آن لائن پہ بھی میں لنک دیتی ہوں، جو لوگ آن لائن پہ اس کو سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس کو واچ کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ ساتھ تھوڑا سا ایکسپلین بھی کرو، کیونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں نا وہ دیکھ کے سمجھ آتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صرف سننے سے آ جاتی ہیں لیکن دیکھنے سے نہیں آتی. تو نماز کا موضوع بڑا اہم ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس پوری کتاب کا یہ ایک پرائم ٹائم ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس کی روشنی میں اپنی نمازوں کو چیک کر سکیں گے تو بہت زیادہ یعنی فائدہ ہوگا. اس میں یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ ماشاءاللہ اس یہ حصہ آپ کی اس پوری بک کا، میں تو سوچ رہی تھی کہ اس کو ایک الگ سے بھی اگر ایک چھوٹے سے مجموعے کی صورت میں جمع کیا جائے تو بہت ہی افیکٹو ہوگا. پوری دعائیں بھی ہیں اس میں نماز کے بارے میں، تو آپ مزید کلیئر کر کے دیکھ سکیں گے. ہاں جی بالکل کنٹینیو کریں ادھر سے. یہ آپ دیکھیں کہ رائٹ وے ٹو پرے، کریے کنٹینیو، آگے کرتی ہے. یہ آپ دیکھیں کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے ہاتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھتے جائیں آگے کرتی جائیں. ہاتھ دیکھیے کیسے رکھے، کلائی یہ جو ہوتے ہیں نا کلائی کے، یہ جو جہاں پہ گھڑی باندھتے ہیں اس کو اس پہ کر کے سینے پہ باندھتے ہیں. یہ سارے دلائل انشاءاللہ بک میں ہم پڑھیں گے. یہ دونوں ہاتھ یہ چیز اس طرح سے، اور اس طرح جیسے ایک پکڑنے کا سٹائل ہوتا ہے، آپ دیکھیں انہوں نے ہاتھ کیسے پکڑے ہیں. نیکسٹ،
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
یہ دعا آپ کی اس بک میں موجود ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو آپ لوگ بھی پڑھیں گے. یہ دعا استفتاح ہے، تین دعاؤں میں سے ایک دعا اللہ کے نبی یہ پڑھتے تھے. ایک عموماً ہمارے ہاں تو سبحانک اللہم وبحمدی کا پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کبھی اس کا ترجمہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود ہی دل چاہے گا کہ یہ پڑھیں. اگر ابھی تک بھی یاد نہیں کی تو آپ نفل نمازوں میں یا سنت میں کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ یاد ہوگی. نیکسٹ،
سبحانك اللهم وبحمدك،
یہ دوسری دعا.
تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك،
ٹھیک ہے؟ تو اس میں دونوں میں کوئی بھی پڑھے.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
اب سورة فاتحہ پڑھی جائے گی.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
رکھے. اب دیکھیے کہ یہ سورہ فاتحہ ہم نے سنی ہے, اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اور جو حدیث ملتی ہیں کہ لا صلاۃ الا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں نماز گھر میں تو بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے, آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں, امام صاحب سری یعنی چھپا کے جیسے ظہر اور عصر ہے آپ کو آواز ان کی نہیں آ رہی تو بھی آپ پڑھیں گے, جہری ہے تو بھی. ایون نماز کی ہر قسم, نماز جنازہ, نماز عید, نماز جمعہ, ہر ایک میں سورہ فاتحہ جو ہے یہ لازمی ہے. اسی بیس پہ یہ بات جو ہم نے ابھی دیکھی تھی جماعت کی نماز میں کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ کو مس کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو مس کرتا ہے, تو یہ لازمی حصہ ہے, اس کو پڑھا جائے گا. اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر آیت پہ رکا جائے, جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے پھر رکیں, الرحمن الرحیم, اور جو ایک گاڑی کی طرح بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ تو ایسے کہ آپ صرف اپنی ہی بات سنا رہے ہیں. تو ہم سب اس وقت جو پریکٹیکل ایک چیز کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنی نمازوں کو چیک کریں, اپنے لیے یہ لکھیں کہ میں نے اپنی نماز میں سورت فاتحہ پڑھنے کی اپنی سپیڈ کو چیک کرنا ہے, سانس ٹوٹتا ہے میرا بیچ میں کہ نہیں. مسنون کیا ہے, ہر ایک آیت کے بعد رکیں, بلکہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جواب دے رہا ہوتا ہے, محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے. اجی نیکسٹ کیجیے. جی یہاں آپ دیکھیے کہ اب سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی کچھ حصہ پڑھا جائے گا, اس کے لیے چھوٹی سورت پڑھ لیں, بڑی پڑھ لیں, ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں, ہمارے ہاں اس پہ دو تین مغالطے ہیں, تین آیتوں سے کم نہ ہو, پوری سورت ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف سورہ فاتحہ یعنی آپ سورت کو ایک بھی آیت پڑھ سکتے ہیں. دوسرا ایک بہت ہی بڑا مغالطہ ہے جو اس موقع پہ ہمارے ذہن میں, وہ کیا ہے کہ ترتیب لازم ہے. یعنی میں جہاں جماعت کراؤں اور عادت کے مطابق اگر میں پہلے میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لوں, اگلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پوچھوں, تو 80% بعد میں لوگ مجھے ضرور یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا, آپ کو تو ترتیب رکھنی چاہیے تھی. تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بک میں بھی یا اس کے دلائل کہ اللہ کے نبی نے پہلے سورت بکرا پڑھی, پھر سورت نساء پڑھی, پھر سورہ آل عمران پڑھی, تو لہٰذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اس موقع پہ اور کیا آپ کر سکتے ہیں, صورتیں بدل کے پڑھیں, ایک پڑھی ہے پھر دوسری پڑھیں. ہاں سورت قل ہو اللہ احد پڑھنی بہت مطلب اس کے ثواب ہے. ایک صحابی تھے معاویہ بن معاویہ, تو نماز پڑھاتے تھے, امام تھے, تو جب اللہ کے نبی تک بات آئی تو لوگوں نے ان کی شکایت کی کہ یہ ہر نماز میں صرف قل ہو اللہ احد ضرور پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں کیا کروں, مجھے اس سورت سے محبت بہت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے پھر خوشخبری دی کہ کہا کیوں, کیونکہ اس میں میرے اللہ کا ذکر ہے, اللہ ایک ہے. تو آپ نے کہا کہ اس سورت کا کے ساتھ محبت کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی سورت پڑھیں پھر بعد میں یہ بھی پڑھ لیں, لیکن صرف قل ہو اللہ پڑھتے جانا اور نماز کا یہی حصہ سمجھنا ہمارے ایک مغالتا ہے کہ صرف قل ہو اللہ ہوتی ہے. میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں کہ لڑک پن تک میرے ذہن میں یہی تھا کہ نماز قل سورت فاتحہ اور دین قل ہو اللہ اور اس کے بعد رکو. یعنی جب میں نے یہ ادھر دعائیں دوسری سنی اور سیکھی تو مجھے لگا یہ میں بدعتیں سیکھ رہی ہوں, لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اتنی پانچ دعائیں رکو کی سجدے کی آگے, انشاءاللہ اس میں ایک دو آپ دیکھیں گے, باقی میں آپ کو بک میں دکھاؤں گی. تو اس حصے کے بارے میں آپ کا کوئی کوشچن ہے ابھی تک جتنی بات ہوئی ہے؟ اونچی بات سے بسم اللہ کل سورہ فاتحہ کی ہے یا کسی کے لیے نا, امام آہستہ پڑھے گا. یہ بھی مسئلہ آپ اپنی اس بک میں بھی پڑھیں گے کہ جو بسم اللہ پڑھنا ہے وہ دل میں پڑھنا ہوتا تھا اور قرأت اپنے. ہاں تو آپ پڑھیں گے لیکن آہستہ آواز میں پڑھیں گے. جی آپ ہر سورت سے, سورت جہاں بھی نئی شروع ہوگی بسم اللہ پڑھیں گے. جی
اگر امام کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ تھوڑی تیز پڑھیں تو ہم ان کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے,
बहुत अच्छा सवाल है इनका कि इमाम जो पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ हम सूरह फातिहा पढ़ें कि बाद में पढ़ें। देखिए इसका मसनून अमल, पहली बात वही कहूंगी कि ऐसे मनासिब और ऐसे आला ओहदों पे फाइज होने से पहले हमें खुद भी अपने नमाजों को रिवाइज करना चाहिए। एक अच्छा इमाम कौन होता है? हर रकत, मैंने जब भी जिक्र किया था कि सूरत के हर हिस्से पे रुके, उसका एक मकसद ये भी होता है कि पीछे मुक्तदी भी वो हिस्सा पढ़ लें। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर रुक जाए। अब मुक्तदी जो पीछे ना, आप पढ़िए पीछे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर अर्रहमानिर्रहीम, फिर पॉज दीजिए, पीछे वाले आपके पीछे पढ़ लें। ये है एक अमल, ये बेहतरीन अमल है। अगर ऐसा ना कोई करे, उसको आदत है या फ्लुएंसी है, वो पूरी पढ़ रहा है, आप क्या करेंगे? पीछे वाले उनसे पीछे रहे, यानी वो अगर कुल यानी दूसरी रकत पे है तो आप तीसरी पे ना जाएं। फिर इसका तरीका क्या होता है कि इमाम को चाहिए कि पूरी सूरत फातिहा के बाद आमीन कहने के बाद कुछ मिनट खामोश रहे, और अक्सर इमाम खामोश रहते हैं। अगर आपने सऊदी अरब इमामों को देखा हो, वो खामोशी किस लिए होती है कि जो पीछे जिन लोगों ने अभी पूरी नहीं की थी वो पूरी कर लें। ठीक है, तो ये दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, लेकिन इमाम से आगे नहीं बढ़ सकते, उनके पीछे रहेंगे। और कोई सवाल इस हिस्से में? जी
जमात के साथ दो तरह की नमाजी होती है ना, जिसमें तो हम तिलावत सुनते हैं। इन्होंने शायद वो बात की जो हम तिलावत सुन रहे हैं इमाम की है, तो हमने उसको उनके साथ खुद भी पढ़नी है।
जी, इमाम के साथ की सूरत फातिहा हर हाल में पढ़नी होती है, क्योंकि सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। बाज़ लोग, ये भी हमारे एक फिकही मसला है, इमाम जो फिकह हनफी के तहत नमाजें पढ़ते हैं वो सूरत फातिहा इमाम के पीछे नहीं पढ़ते, और वो दलील देते हैं सूरत नाहल की एक आयत है, फ़ाइज़ा क़रात अल क़ुरआन फ़स्तमेउ वंसतु, वंसत क्या है, फ़नसतु खामोश रहो, और ताकि तुम पे रहम किया जाए। थोड़ा सा झटकी आयत मुझे जहन, उसका तर्जमा यही है कि जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोशी से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। वो इसकी दलील लेते हैं कि देखो कुरान पढ़ा जा रहा है तो हम खामोश रहेंगे, इसलिए हम नहीं पढ़ते। ये एक रीजन है फिकह हनफी के मुताबिक इस बात पे, मसले पे। हालांकि आप देखिए कि दो दो बातें इस पे हम देख सकते हैं। पहली बात है कि सूरह फातिहा कुरान नहीं है, ये एक अलग सहीफा है जो अल्लाह के नबी को कुरान के साथ दिया गया था। सूरह नहल है, एक सूरह आराफ की आयत है, एक सूरह नहल के कि हमने आपको सूरह, ये नहल है कि हमने आपको सबल मसानी दी और साथ ही कुरान हकीम दिया। ये सहूलत की खातिर कुरान मजीद के इब्तदा में लिखी जाती है, असल कुरान सूरह बकरा से शुरू होता है। ठीक है, पहली बात है। फिर दूसरी बात यह है कि सहाबा कराम आखिरी वक्त तक नबी सल्लम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ा करते थे। हालांकि ये आयत जो है ये मक्की दौर की आयत है और ये पहले नाजिल हो चुकी थी, तो मुफस्सरीन कहते हैं कि सहाबे किराम को क्या ये बात नहीं पता चली थी? हाँ, सिंपल बात है कि सूरह फातिहा के अलावा जो अगला हिस्सा है, जो अभी हमने, इस पे एक और मसला जहन में आ गया, और वो क्या है कि सूरह फातिहा तो हम पीछे पढ़ेंगे, उसके बाद जो पीछे सूरतें पढ़ी जाती है ना, आप एक सूरत पढ़ लें, दो पढ़ लें, तीन पढ़ लें, जमात से इमाम जो पढ़ने पढ़े, अब इमाम के साथ आपने नहीं पढ़नी। नबी सल्लम को एक दफा नमाज में बोझलपन एहसास हुआ, बोझल लगी, फिर आपने बाद में पूछा कि क्या तुम मेरे पीछे तुम भी दिल में वो सूरतें पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा जी हम पढ़ते हैं। तो आपने कहा कि ऐसा ना करो, इससे इमाम को भूल लाहक होती है। सूरह फातिहा के बाद जो जहरी नमाजें हैं, जिसमें अकीरत ऊंची होती है, फजर मगरिब और ईशा, इसके अंदर फिर रकत इमाम के पीछे आप नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सुनेंगे। वहां है वो बात के फन से तूला लकुम तुरहम, उनकी बात है। ठीक है, लेकिन जब आप अपनी नमाज पढ़ेंगे तो आप फिर उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई बात? चलें अगले एक्शन पे, और कोई भी सूरतें पढ़ सकते हैं, एक पढ़ लें, दो पढ़ लें, बदल के जो भी पढ़ें। जी नहीं, शर्त नहीं है, एक पढ़ सकते हैं, जरा बड़ी हो, बस कुछ हिस्सा हो कुरान का। सहाबे किराम क्या पढ़ते थे? ये जो हमारे यहाँ कुरान पाक में रुकू है ना, ये रुकू कहाँ से शुरू हुआ है? रकत से शुरू हुआ है, यानी कुरान पाक का कम अज कम वो हिस्सा जो एक रकत में पढ़ते थे सहाबी, फिर उसको बाद में रुकू कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ आप देखिए कि इन्होंने, अब ये है रुकू, यानी क्याम के बाद जो हमारे दुआ पढ़ने की जो बात थी वो पूरी हुई, उसके बाद अब जब हम नमाज में रुकू में जाते हैं तो इन्होंने रफुल यदैन करा और फिर उसके बाद रुकू में गए। रुकू की पोजीशन देखिए, बहुत काबिले गौर है, कमर बिल्कुल सीधी है, हाथ सीधे अटके हुए। इसके बरक्स अगर आप इस इनके सर को नीचे करें कि ये यूं ढहलान बन जाए, यूं, ये भी सही नहीं है। और बाज लोग इतना मुख्त इतना सा झुकते हैं बस, दोनों नहीं ठीक। हदीस में आता है कि अपनी पुश्त को काम सीधा करो इस तरह से, ठीक है। हाथों को आप ढीले से रख के आप यूं कोनियों को टिका लें। अब इंशाल्लाह हम बाद में एक प्रैक्टिकल करेंगे कि हम गलत और सही तरीके से नमाज पढ़ के देखेंगे कि कैसे करते हैं। बिल्कुल सीधे हाथों, और ये जो आपके हाथ हैं ये अल्लाह यूं होते थे, यानी जैसे ग्रैब करने की कैफियत है, ये आपके नीज जो घुटने होते हैं इसको पकड़ने वाली कैफियत है, और ये हाथ पूरी पांच उंगलियां खुली होती थी, ये कैफियत है। और निगाह आपकी जो है वो बिल्कुल नीचे होगी, यानी रुकू के अंदर जाते वक्त। और इस वक्त आप देखिए कि फिर वही बात के आपने हाथ खड़े किए, और इस आपकी किताब में तकरीबन 8 से 10 सहाबे कराम का अमल ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकू में जाते वक्त वो हाथ उठाते हुए देखा करते थे। तो बेसिकली ये एक नमाज में तकरीबन 4 दफ़ा हम हाथ खड़े करते हैं, नमाज शुरू करते वक्त, रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त। और एक और बात जो कहने लगी हूँ जो बहुत सारों को पता नहीं, तीसरी रकत के बाद के लिए जब हम दोबारा खड़े होते हैं ना, तशहुद में बैठने के बाद जब हम तीसरी रकत के लिए खड़े होते हैं ना, तो दोबारा अल्लाह अकबर कह के खड़ा होना चाहिए। बेसिकली जो हमारी नीयत बनती है ना शुरू में इस्तफ्ताह की, वो 2 रकत तक रहती है। जूं ही आप तशहुद के बाद तीसरी रकत में खड़े हो जाते हैं तो उस वक्त फिर आपको दोबारा उसके लिए अल्लाह अकबर करना होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए रुकू में इन्होंने वही मारूफ दुआ पढ़ी जो हम सब पढ़ते हैं, सुभान रब्बी अल अजीम, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मौके पे एक से ज्यादा दुआएं जो हैं साबित हैं नमाजों की। ये बुक जो है ना हिस्नुल मुस्लिम, ये बड़ी खूबसूरत बुक है, इसमें तकरीबन वो सारी दुआएं जमा की हुई है नमाज के अंदर के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। मसलन मैं बोल देती हूँ ताकि दूसरों को भी इससे फायदा हो। जब रुकू में जाएंगे तो क्या कहेंगे, यानी अल्लाह अकबर खड़े करके रुकू में गए, फिर उसके बाद रुकू से के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सुभान रब्बी अल अजीम, सुभान रब्बी अल अजीम। इसके पढ़ने की कम से कम तादाद 3 है, जिसने 3 से कम पढ़ा उसकी रकत नहीं, उसके रुकू नहीं होगा। ज्यादा पढ़ सकते हैं, 5 दफा पढ़ लें, 7 दफा पढ़ लें, 9 दफा पढ़ लें, इंशाल्लाह ताला ताक अदद में इसको अल्लाह के नबी ने ज्यादा भी पढ़ा। इसी तरह एक और दुआ आपसे साबित है, और वो क्या है, सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, बस इतने ही 3 लफ्ज हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरी दुआ इस वक्त है सुभानक व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता, ये सही मुस्लिम के लफ्ज हैं, इससे ऊपर वाले जो थे ये अबू दाऊद के लफ्ज थे। तो ये भी दुआ अल्लाह के नबी पढ़ते थे। फिर एक और दुआ हजरत आयशा के नाते से हमें मिलती है, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फिरली, अब ये भी पढ़ते थे। एक पांचवी दुआ है हजरत आयशा ही से, वो भी मिलती है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह, ये सही मुस्लिम के लफ्ज हैं। मैं हैरान होती हूँ कि हमारे कल्चर में इतनी ऑथेंटिक दुआएं क्यों नहीं मिलती, क्योंकि इनके तर्जमे नहीं हुए थे। ऐसी दुआएं हदीस की किताबों में मौजूद थी। इसकी बजाय बाज दफा नमाजों में हम और कई चीजें अपनी मतलब शामिल कर पाते हैं। पहली दफा जब मैंने सुनी तो मैंने कहा ये तो बिदत होंगी या पता नहीं कैसी बातें, लेकिन आप एक एक को चेक करें, इसकी सनद अल्हम्दुलिल्लाह आसन दर्जे पे। अब ये 5 है, और इसमें एक और दुआ है, सुभान जिल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल अजमती, और एक और दुआ है हजरत अली से ये मिलती है, अल्लाहुम्मा लका रकातु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु खश अलका समई व बसरी व मुखी व अजमी व असबी। अब ये 5ों में से आप जो मर्जी पढ़ें, 5 नमाजों में 5 मुख्तलिफ पढ़ लें, इतना मजा आता है। आप यकीन करें आपकी जैसी दिल की फीलिंग्स होती है ना, अब वैसी दुआ पढ़ें। अल्लाह की मोहब्बत आई हुई है तो तारीफ वाली दुआ पढ़ें, अपना कोई गुनाह याद आ रहा है तो अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, बल्कि इसमें वो दुआ नहीं है। अब इसमें आपको हिस्नुल मुस्लिम में एक और दुआ मिलेगी, सजदे की दुआ में आएगी, वो मैं वहां डिस्कस करूंगी। फिर ये रुकू की जब याद करेंगे ना, तो इसमें ये मजा है कि इसमें कुछ दुआएं आप सजदे में भी पढ़ेंगे, अभी आप देखेंगे ये रिपीट होंगी। तो इंशाल्लाह जो अल्लाह ने चाहा, आप लोग 1.5 साल का कोर्स करेंगे तो उसको उसमें आपको यानी ये पूरी नमाज जो है हम ये बुक करवाएंगे दुआओं के लिए, कि जिसके नाते से फिर आप अपनी पूरी नमाज भी सुबह शाम की दुआओं को भी देखेंगे, ठीक है। इत्मीनान से जाना है रुकू में जाते हुए, देर नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी, ये नहीं कि हम बस एक भागदौड़ मची हुई है। एक शख्स था, वो नबी सल्लम के सामने आए तो उन्होंने नमाज पढ़ी, जल्दी से गए नमाज पढ़ के आ गए। आपने कहा तुमने नमाज नहीं पढ़ी, फिर पढ़ो। वो फिर गए, फिर पढ़ी, फिर आ गए। 3 दफा ऐसा हुआ। अब देखिए, जिसको ये भी पता हो कि कोई देख रहा है और अल्लाह का नबी देख रहा है, वो कैसे पढ़ रहे होंगे। इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी नमाज अच्छी नहीं हुई, आपने कहा तुमने नमाज नहीं पढ़ी। आखिर वो आया और कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं इससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता। क्यों? फिर आपने उनको बताया कि जब तुम खड़े हो जाओ, फिर नमाज की सूरह फातिहा पढ़ो, फिर जितना कुरान तुम्हें आप पढ़ सको वो पढ़ो, फिर सुकून से रुकू में जाओ, फिर खड़े हो जाओ, रुकू के बाद दोबारा कमर सीधी लाजिम है, अभी जो हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर सजदे में जाओ, इत्मीनान से सजदा करो, फिर उठो, फिर दूसरे सजदे में बैठ के लिए रुको, फिर जाओ। तो इसके बगैर तुम्हारी नमाज जो है वो ठीक नहीं होगी। तो लिहाजा जब तक बीच में कमर सीधी ना कर ली जाए, जैसे अभी करेंगे ये, तो आप करके दिखाइए जरा। अगला ने
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.
जी, अब यहाँ देखिए कि दो चीजें हैं आपके सामने। उठे, इन्होंने उठ के हाथ खड़े किए, दोबारा रफुल यदैन था। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि हाथ बंधे हुए हैं सीने पे, दोबारा हाथ बंधे हैं। हमारे आम अमूमन कल्चर में हम पाकिस्तानी लोग जैसे नमाज पढ़ते हैं तो हाथ छोड़ते हैं। ये वो अमल है नमाज का कि ये दोनों तरह से मिलता है। आप जहाँ भी अरब कम्युनिटीज को देखेंगे वो हाथ बांधते हैं। हम मोस्टली जो अपने मुल्कों में लोग होते हैं वो इससे पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों तरीके जायज़ हैं। लेकिन मैंने जिस पे रिसर्च की थी एंड पे, और जिन आलिम से, यानी डॉक्टर फजल अलाई साहब हैं, अगर आप में से कोई उनसे मुतारिफ है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हाथ छोड़ने वाली सनत स्ट्रांग है। अब आप देखिए कि मैं हाथ छोड़ती हूँ, मेरे शौहर हाथ इस तरह बांधते हैं, कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, कोई इससे दीन में, हाँ सुन्नत से साबित है, तो दोनों तरह ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं तो ये रुकू से उठने के बाद हाथ बांध रहे हैं। अब आप बचपन से, मुझे पता है आप में से 99 बल्कि 100% लोग रो खोलते हैं, खुलते रखें दोनों की अंदर, और दोनों की दलील मौजूद है, ये कोई मेरी या किसी और आलिम की बात नहीं, ये दोनों तरह से मौजूद है। फिर आप देखिए कि खड़े होते वक्त इन्होंने क्या पढ़ा, समे अल्लाहु लिमन हमीदा, सुन ली बात अल्लाह ने उस बंदे की जिसने उसकी तारीफ की, और फिर उसके बाद रब्बना वलकल हम्द। अब यहाँ सिर्फ ये है, लेकिन रुकू से उठने की दुआओं में हमें इसके अलावा और भी दुआएं मिलती हैं। ये तो बिल्कुल वो चीज़ आपके साथ इस वक्त हो रही होगी जो मैं आपके जहन को महसूस करते हुए कहूँगी कि आप एक ही खाना खाने के आदी थे और आपके सामने अब वैरायटी आ रही है। एक ही तरह के कपड़े रोज पहनते थे, अब आपके सामने एक दूसरी किस्म के कपड़े आ रहे हैं। नमाज में वैरायटी जब आई सुन्नत के अंदर रहते हुए, तनवो आया, आपकी नमाजें जिंदा हो जाएंगी, आप इंजॉय करेंगे। मैंने हिस्नुल मुस्लिम से नमाज याद की थी, और एक मत ऐसा मेरे पास हमेशा मेरी छोटी पॉकेट साइज रहती है, और आप उठते बैठते जागते सोते, यानी इसमें से आप छोटी छोटी दुआएं याद करते जाएं, इंशाल्लाह आपकी नमाज एक एक महीने के अंदर, अभी रमजान में ही अगर आप ये एक्टिविटी करते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा प्यारी होगी। फिर एक दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से जब उठते तो क्या कहते थे, समे अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु, मिल अस समावाती व मिल अल अर्दी व मिल अमा शित मिन शई इबाद मिन शईन बादा। अल्लाह ने सुन ली उस बंदे की बात जिसने उसकी तारीफ की, ए हमारे अल्लाह तेरे ही लिए सारी तारीफ है, आसमानों जमीन और हर उस चीज के बराबर जो तू चाहे। तर्जमा देखें तो दिल चाहता है ना पढ़ने को, ये रुकू से उठते के बाद। अब देखिए जो लोग रुकू से उठ के फौरन सजदे में गिर जाते हैं, बताइए क्या वो इसमें से कोई भी दुआ पढ़ पाते होंगे? नहीं पढ़ पाते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुमने किसी चोर को देखा है? लोगों ने कहा, क्या मतलब चोर की बात क्या हुई? कहा, तुम बताओ चोर कैसा होता है? यानी इस तरह से आपने बात की, लोगों ने कहा कि बहुत बुरी बात है अल्लाह के नबी, ये तो गुनाह कबीरा है। फिर आपने कहा, कान खोल कर सुन लो, सबसे बुरी चोरी नमाज की चोरी है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी नमाज की चोरी क्या है? कहा, जो नमाज का रुकू और सजदा पूरा ना करे वो नमाज में चोरी करता है। कमर सीधी भी नहीं होती, लोग रुकू में जमीन में चले जाते हैं, जब तक रुकू के बाद इस तरह कमर सीधी नहीं होती आप सजदे में नहीं जा सकते। और इस सीधी होने के दौरान की ये सारी दुआएं हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, इसको कौमा कहते हैं, यानी रुकू के बाद वाली कैफियत है। एक और बड़ी प्यारी दुआ है, और मैं कहती हूँ इस दुआ का तर्जुमा इंसान को वाकई दुनिया की हर चीज़ से बेनियाज कर देता है, लोगों की तरफ इंसान देखता ही नहीं है अगर उसको इस दुआ का तर्जुमा समझ आ जाए। दुआ क्या है? पहले से कुछ मिलती जुलती भी है और कुछ नए लफ्ज हैं। रब्बना लकल हम्दु मिल अस्समावाति वल अर्द व मिल अमा शित मिन शैइम बादा अहलसना इवल मज्द अहक्कु मा कालल अब्द व कुल्लुना लक अब्द अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत वला मुअतिया लिमा मनात वला यन्फउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। इसका तर्जमा क्या है? ए हमारे परवरदिगार, हर किस्म की तारीफ सिर्फ तेरे ही लिए है, आसमानों और जमीन और हर उस चीज के भराव के बराबर जो तू चाहे, और बंदे ने जो तेरी तारीफ और बुजुर्गी की वो तेरे लायक है, हम सब तेरे ही बंदे हैं। ए अल्लाह, कोई रोकने वाला नहीं उस चीज को जो तूने दी, और कोई देने वाला नहीं उस चीज को जो तूने रोक दी, और दौलतमंद को दौलतमंदी तेरे अजाब से नहीं बचा सकती। ये बंदा मोमिन का अकीदा होता है, अल्लाह देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और अल्लाह ना दे सारी दुनिया आपको देना चाहे तो नहीं दे सकती। ये भी दुआ अल्लाह के नबी कौमे में पढ़ते थे। फिर इसी तरह इससे मिलते जुलते कुछ और लफ्ज भी हैं। अब सबको सुन के घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान से शुरू करें। एक छोटी पढ़ते ही थे पहले समय अल्लाहु लिमन हमीदा, अब रब्बाना वलकल हम्द कहना शुरू कर दें। फिर एक हफ्ते के बाद आप इसके अंदर रब्बाना वलकल हम्द के अगले लफ्ज शुरू कर दें। फिर इसी तरह एक और दुआ है, जो आपका दिल चाहे, जो आपको सहूलत लगे उसमें से याद करते रहें। मसलन जो अगली दुआ है वो क्या है कि अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल अस्समाई व मिल अल अर्द व मिल अमा शित मिन शैई बादु अल्लाहुम्मा तहिरनी बिस सलजी वल बरदी वल मा इल बारिद अल्लाहुम्मा तहिरनी मिनज़ ज़ुनूब वलखताया कमा युनक्कस मिनल वसह। अल्लाह तेरे ही लिए सारी तारीफ है, आसमानों और जमीन और हर उस चीज के भराव के बराबर जो तू चाहे। अल्लाह मुझे बर्फ ओले और ठंडे पानी से पाक कर दे। अल्लाह मुझे गुनाहों और खताओं से ऐसा पाक कर दे जिस तरह सफेद कपड़ा मैल कुचैल से पाक किया जाता है। फिर रहेंगे जिस्म पे गुनाह, और इस तरह शऊर वाली नमाजें पढ़ेंगे तभी तो नमाज हमारे गुनाहों को माफ कराएगी। और जरा सोचें जो इससे पहले आखिरी नमाज हमने पढ़ी थी वो कैसी पढ़ी थी, पता भी नहीं था क्या पढ़ी है, बस एक लाशौरी तौर पे एक एक्सरसाइज वाली कैफियत में कुछ एक्शंस को करके हम समझते हैं ये नमाज है, वो सही नमाज नहीं है।